देवियों सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश के सातवें चैप्टर जिसमें ईश्वर के अलग अलग आयामों के बारे में चर्चा है, आज उसका दसवां भाग है। प्रश्न है, क्वेश्चन है, कैन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बी प्रूवन बाय डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस, जिसको आप प्रत्यक्ष कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है यहां आप अपने इंद्रियों से देख सकते हैं कि नहीं, आप आंखों से देख सकते हो कि नहीं, सुन सकते हो कि नहीं, सूंघ सकते हो कि नहीं, चख सकते हो कि नहीं, इंद्रियों के द्वारा जान सकते हो कि नहीं। और जो प्रश्नकर्ता स्वयं ये समझता है कि ईश्वर को प्रत्यक्ष के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और वो एक रेफरेंस देता है सांख्य दर्शन की, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस। इस सांख्य दर्शन के एक सूत्र को मिसकोट करते हैं, और क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर की सिद्धि हो नहीं सकती, इंद्रियों के द्वारा कोई उसको जान नहीं सकता, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस देयर कैन बी नो इन्फरेंशियल एंड अदर एविडेंसेस। जो तीन या चार तरह के एविडेंसेस माने जाते हैं किसी भी चीज को, किसी चीज को मानने के लिए या समझने के लिए, पहला है प्रत्यक्ष सेंसुअल नॉलेज और डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस, जो इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं। आप जो कुछ देखते हो, आपकी आंखें जब उस वस्तु पर पड़ता है, आपका मन आपके आंख के साथ जुड़ता है, आपका माइंड, तब जाकर के आप कह पाते हो, समझ पाते हो कि आपने एक पेड़ देखा, एक घर देखा, जो भी देखा। तो माइंड प्लस सेंस प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नॉलेज। ऑब्जेक्ट है तो भी आपको उसका ज्ञान नहीं होगा अगर आपके आंखें उस पर ना हो। आप रास्ते में गाड़ी चला के जाते हैं, हजारों चीजें आपके आसपास जाते रहते हैं, आपकी आंखें उससे लिंक भी करता है, उसके बावजूद भी आप नहीं कह सकते कि आप उसको देखा या जाना, क्योंकि आपका मन और कहीं होता है। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और दर्जनों पेज पढ़ जाते हैं और आपको लगता है, हमें लगता है कि बड़े अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी पूछो तो एक भी आंसर नहीं आता, क्योंकि आंखें किताब पेजें पर चलती रहती हैं पर माइंड और कहीं होता है। तो ज्ञान तभी होता है जब माइंड प्लस सेंसेस, सेंस ऑब्जेक्ट पर जुड़ा हुआ हो, और दूसरा कंडीशन है कि माइंड भी सेंस के साथ जुड़ा हुआ, उसी सेंस के साथ जुड़ा हुआ हो जिस सेंस के साथ ऑब्जेक्ट का कनेक्शन है, तभी ज्ञान होता है। आप कुछ सुन रहे हैं, मान लीजिए आप यहां बैठ के सुन रहे हैं, आपके कानों में शब्द जा रहे हैं, इसका मतलब लिंक है, पर मन अगर और कहीं है तो आप तीन घंटे तक सुनते रहिए, आपको पूछा जाए क्या हुआ तो आपको कुछ नहीं पता होगा। तो ज्ञान किसको कहते हैं, जो द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज माइंड प्लस सेंस एंड प्लस ऑब्जेक्ट, तीनों जब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाए तो जो घटता है, जो कुछ वट एवर हैपेंड दैट इज कॉल्ड नॉलेज, रिमेंबर। और इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। बहुत तरह के नॉलेज होते हैं, जानने के तरीके होते हैं, वन ऑफ देम इज प्रत्यक्ष, द डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस। इसी तरह जीभ के द्वारा आप खाना खा रहे हैं, पर अगर आप टीवी में घुसे हैं, आपको कोई मजेदार प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें डूबे हुए हो, थाली साफ कर चुके हैं तो भी आपको पता नहीं उसका स्वाद कैसा था, या आपने एक बार भी नहीं खाया, पकड़ के बैठे हैं, आप अंदर घुसे पड़े हैं, ऑब्जेक्ट और सेंस का कनेक्शन है पर माइंड का नहीं है। इसी तरह सुंघना वगैरह वगैरह, तो ये प्रत्यक्ष है। दूसरा एक ज्ञान के तरीका है, उसको हम कहते हैं अनुमान, इन्फरेंशियल नॉलेज। दुनिया में आप बहुत सारे ज्ञान नहीं पाते हैं, वो डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस नहीं है, वो अनुमान है। अनुमान का मतलब, इन्फरेंस का मतलब होता है जब दो अलग अलग चीजों में, खास करके कॉज और इफेक्ट में, कारण और कार्य में जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, अगर वो एस्टैब्लिश्ड है, प्योरली एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, और उनमें से किसी एक को जानकर दूसरे को नॉलेज कर लेना बिना देखे बिना सुने, तो दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस। उदाहरण देते हैं, जैसे आपने कहीं धुआं देखा जोर से उठ रहा है, बहुत से आप गाड़ी चला के जा रहे हैं या घर में हैं, तो आप समझ गए कि कहीं आग लगा है। आप घर में हैं, आपको खाना पकाने वाले गैस का स्मेल आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपके स्टोव है कहीं खुला हुआ है। क्यों? रिलेशनशिप क्या है कि जब भी जहां धुआं होता है वहां आग होता है। ये जो धुआं के साथ आग का रिलेशनशिप है, ये एस्टैब्लिश्ड है। ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा कि धुआं तो है पर आग नहीं है, कोई बीच में रूल के लॉ का कोई ब्रीच नहीं हुआ, कोई टूटा नहीं है। इसीलिए जब भी आप धुआं देखें, आग को देखें ना देखें, आप ये पूरे यकीन के साथ मान सकते हैं कि वहां आग है। इसी को अनुमान कहते हैं। बिना जिस चीज का ज्ञान आपको हुआ, आपने उसको नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं चखा, आपका सेंसुअल कनेक्शन उसके साथ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपको उसका ज्ञान हुआ, और जिस प्रोसेस से हुआ उसे हम इन्फरेंस कहते हैं। पर इसी आग और धुआं के रिलेशनशिप को बदल दे तो आप गलत ज्ञान मिलेगा। वो क्या है? आप कहीं आग देखकर नहीं कह सकते कि यहां धुआं होता है, क्योंकि आग के साथ धुआं का रिलेशनशिप तो है पर इसे एस्टैब्लिश्ड नहीं है, हर जगह नहीं होता है। आपके घर में आप खाना पकाते हैं आजकल तो धुआं नहीं होता है, पर जब लकड़ियों में खाना पकाते थे तो धुआं होता था। जहां जहां आग होता है वहां धुआं नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल है, कंडीशनल है। आग में धुआं होने के लिए कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन क्या है कि गीले ईंधन होना चाहिए। लकड़ी से जल रहा है, वो लकड़ी भी गीला हो, तो इसीलिए ये अनुमान नहीं है। आप कहीं अगर बोल दिया आग देख करके यहां भी धुआं है तो आप गलत है, क्योंकि वो इन्फरेंस के रूल्स के नहीं आता है। अब किसी भी प्राणी को देख करके, सेंटिएंट को देख करके आप बता सकते हैं कि इसके मां बाप हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना मां बाप के पैदा हुआ हो। वो डायरेक्ट मां बाप है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब, आजकल तो टेस्ट ट्यूब से भी बच्चे हो जाते हैं, और सरोगेट मदर भी हो जाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, पर कोई ना कोई मां बाप है जो इस बच्चे के सोर्स हैं। आप उनको देखते हो, देखा है नहीं देखा है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सामने एक व्यक्ति है तो जरूर उसके मां बाप होंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आज तक चीजें, ऐसा ज्ञान हमें नहीं हुआ कि बिना मां बाप के कोई बच्चे हुए हैं। हो सकता है आगे जाकर के ऐसा कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट में हो तो वो अलग बात है, अब तक तो यही है। पर इसका अपोजिट आप नहीं अनुमान से जान सकते, आप इन्फरेंस नहीं कर सकते। वो क्या है, किसी भी इंसान को देखकर आप नहीं बोल सकते कि ये किसी का बाप है या किसी की मां है। क्यों? इंसान होने पर मां बाप होने का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड नहीं है, होते हैं पर उसमें कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप मां या बाप बनते हैं। पर पैदा होने के लिए आप हैं उसके लिए आपके मां बाप के लिए कोई कंडीशन एस्टैब्लिश्ड है, होना ही होना है। तो ये अनुमान प्रमाण कहते हैं। आपके डेली लाइफ में आप ज्यादातर जो एक्टिविटीज करते हैं वो आप डायरेक्ट कॉग्निशन से नहीं करते, आप इन्फरेंस से करते हैं। जब आपका बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं लाता है तो आप समझ जाते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है ठीक से। जब स्कूल से एजेंडे में उसके टीचर लिखकर कुछ देता है, एस लिखता है और कुछ लिखता है, तो आपको लगता है स्कूल में कुछ गड़बड़ी की। आपने नहीं देखा वो स्कूल में गड़बड़ी की थी क्या नहीं की थी, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस, पर वो सच होता है। इन्फरेंस कंडीशनल होता है पर वो एक बहुत आपके लाइफ का ज्यादातर जो ज्ञान होता है वो इन्फरेंस बेस्ड होता है। पर इन्फरेंस के लिए भी प्रत्यक्ष ज्ञान जरूरी है। प्रत्यक्ष मतलब पहले आपने कभी ना कभी आंखों से देखा होगा कि धुआं और आग एक जगह होते हैं। आपको पहले सैकड़ों बार ये देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जो भी इंसान होता है वह प्राणी होता है, उसके मां बाप भी होते हैं, तभी जाकर के आपकी कंडीशन एस्टैब्लिश्ड होगा। मतलब बिना प्रत्यक्ष डायरेक्ट कॉग्निशन के बिना इन्फरेंस नहीं हो सकता। इतनी सारी बातें मैंने इसीलिए समझाई कि बोलने वाला बोल रहा है, क्वेश्चन पूछने वाला पूछ रहा है, क्योंकि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, इसीलिए वो प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं है। दूसरा, क्योंकि प्रत्यक्ष से ईश्वर सिद्ध नहीं होता तो इन्फरेंस भी वहां लागू नहीं होगा, क्योंकि इन्फरेंस के लिए पहले तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ता है ना, कहीं ना कहीं तो आप कुछ देखोगे तभी तो जानोगे। रास्ते में स्मेल आ रहा है, कहीं पर आपको कड़ा स्मेल आ रहा है, आप कहते हो कहीं टायर जल रहा है, कहीं बैंगन जल रहा है। आपको कैसे पता चला कि बैंगन जल रहा है या टायर जल रहा है? पहले आपको कोई स्मेल आया, आपने देखा कि ये टायर है, ये देखा कि ये बैंगन है। अब आप बिना देखे स्मेल लेकर बोल सकते हैं कि ये बैंगन है कि टायर जल रहा है, पर पहले एक बार जानना जरूरी है ना, क्योंकि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा, तो इसका इन्फरेंस भी नहीं हो सकता। इसलिए अनुमान से भी ईश्वर नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से नहीं होता, अनुमान से भी नहीं होता। तीसरा जो एविडेंस मानते हैं उसको कहते हैं शब्द प्रमाण, वर्बल एविडेंस। मतलब शास्त्रों में लिखा है, हमने ज्ञानियों से सुना है, पर शब्द प्रमाण जो वर्बल एविडेंस है, जो टेक्स्ट में लिखा है, जो ज्ञानी लोगों ने ऋषि मुनियों ने कहा है, वो तभी एविडेंस होता है जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण में या इन्फरेंस से हम उसको एस्टैब्लिश कर सके, नहीं तो कोई कुछ भी बोलता जाए। जैसे कि हजारों सालों तक आप समझते थे, हम समझते थे, या लोग काफी सारे समझते थे कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी स्थिर है। ये तब तक समझते रहे जब तक हमें कोई प्रत्यक्ष या इन्फरेंस के द्वारा किसी ने सिद्ध नहीं किया कि नहीं, ये आप जो देखते हो वो जो दिखाई देता है वो नहीं, आप उसके लिए एक और बड़े नजर से देखना पड़ेगा, आपको टेलीस्कोप से देखना है, माइक्रोस्कोप से देखना है, आपको और चीजें रिसर्च करना है, इन्फ्रेंस के द्वारा आप पता लगाते हो, तभी जाकर के वो शब्द प्रमाण या वर्बल टेस्टिमोनी टिकता है। अगर खाली किसने कुछ भी बोल दिया, जैसे कि धर्म रिलीजियस फील्ड में होता है, कोई कहीं कुछ भी बोल देता है, उसको 10-20 लोग मान जाते हैं, तो वो एक तरह के एस्टैब्लिश टेस्टिमोनी हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने कहा है, हमारे अमुक ने कहा है, हमारे बाबा ने कहा है, हमारे आचार्य ने कहा, तो वो प्रूफ्ड हो गया। नहीं, उसको किसी दूसरे प्रूफ के द्वारा उसको एग्जामिन करना होता है, तभी शब्द प्रमाण वैलिड होता है, तभी वर्बल टेस्टिमोनी वैलिड होता है। तो क्योंकि जो किताब वगैरह में लिखा है ईश्वर है, वो तो इन्फरेंस और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, इसलिए ईश्वर नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता पूछता है। उत्तर समझने से पहले 2-3 चीजें आपको बताएं, जो इस चैप्टर में हम बहुत सारे चीजें डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सारे ईश्वर के बारे में लोगों के अंदर जो अलग अलग तरह के इल्यूशंस हैं या जिस तरह के कंफ्यूजन्स हैं, उसके बारे में ये डिस्कशन है। पहला, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं होता है, जैसे कि नास्तिक लोग या साइंटिस्ट लोग मानते हैं। क्यों? प्रूफ यही है कि भाई उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई इन्फरेंस नहीं है, टेक्स्चुअल एविडेंस है, पर वो तब तक प्रूफ नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा जब तक वो दूसरों से मैच करे। ये नास्तिक लोग हैं। दूसरे कुछ लोग होते हैं, हमारे आप में से भी मिल जाएंगे, जो मानते हैं कि हम ईश्वर के, जो संसार या हम लोग हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। अंश का मतलब वी आर द पार्ट ऑफ गॉड, वी आर द लाइंस ऑफ गॉड, हम ईश्वर के अंश हैं, या ब्रह्म के या ईश्वर के अंश हैं। दूसरा कंफ्यूजन है। तीसरा कंफ्यूजन है, लोग ऐसा, बहुत सारे लोग या मानते हैं या बताते हैं कि ये संसार और आप और हम सब माया हैं। माया मतलब इल्यूशन है, इग्नोरेंस है। एक्चुअली हम और ये दुनिया कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, पर हमें लगता है कि ये कुछ है। जैसे ये कंप्यूटर को मुझे लगता है कंप्यूटर है, बट एक्चुअली इट्स ए इल्यूशन। और बड़े बड़े सो कॉल्ड साइंटिस्ट, रिलीजियस फिलोसोफर साइंटिस्ट, मतलब तीनों जिनके अंदर भरा पड़ा है, मतलब रिलीजियस नॉलेज भी बहुत भरा पड़ा है ऐसा वो मानते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी भरा पड़ा है ऐसा भी वो मानते हैं, वो बड़े फिलोसोफर हैं ऐसा भी वो मानते हैं, और बड़े साइंटिस्ट हैं वैसा भी वो मानते हैं, चारों वो उनके अंदर है ऐसा मानने वाले लोग काफी सारे एविडेंस लाकर रख देते हैं कि देखो फिजिक्स में ये हो गया। वो कहता है लास्ट में एक वैक्यूम होता है, नथिंग इज देयर, सब नथिंग से पैदा हुआ, तो इट्स जस्ट इल्यूशन। तो ये एक दूसरा कंफ्यूजन फैक्टर है, ये सो कॉल्ड, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों को इस तरह के कंफ्यूजन ज्यादा है। और ये जो थोड़ा रिलीजियस साइंटिस्ट होते हैं, इनको ज्यादा ये बीमारी धरती है। प्योर साइंटिस्ट को नास्तिकता की बीमारी होती है, रिलीजियस साइंटिस्ट को कुछ नहीं में से माया का फॉर्मूला ज्यादा जस्ता है। एक दूसरे तरह के प्रचार है, लोग हैं, कंफ्यूजन है कि ईश्वर के हम सब दास हैं, मतलब वी आर द स्लेव ऑफ गॉड, वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। ये संसार और हमें ईश्वर ने बनाया कि हम उसकी सेवा करें। वो जैसे पहले जमाने में अमेरिका में लोग अफ्रीका से लाते थे स्लेव बना के, व इंडिया से, पाकिस्तान से, उधर से, साउथ एशिया से ब्रिटिश लोग लाते थे कि स्लेव चाहिए उनको, कोई काम करने वाला चाहिए उनको लाते थे। ये जैसे कैरिबियन कंट्रीज में बसाया और भी यहां अमेरिका में भी, कि भाई आप खाना पीना आपको देंगे, रहने पीने के लिए देंगे आपके लिए, आप बाकी हमारे लिए हमारी सेवा करो, तुम सेवक हो, दास हो, जिंदगी भर हमारी बात मानोगे। और ईश्वर उसी तरह का कुछ है और हम सब उसके दास हैं, सेवक हैं, नौकर हैं, और हमें जीवन भर उसी की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो ये सारी जो बातें मैंने आपके सामने रखी, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन है कि अच्छा कुछ आपके मन को अच्छा लग गया, दिल को अच्छा लग गया तो इसीलिए अच्छा है, कि सचमुच इसकी कुछ वैलिडिटी है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। अभी जो जितने प्रश्न आपने सुना कि किसी भी प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती, ईश्वर है ऐसा नहीं माना जा सकता, उसके बारे में स्वामी जी उत्तर देते हैं, नो, जो आपने कहा वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक के प्रमाण से ईश्वर नहीं पता लगता, अनुमान से पता नहीं लगता, ऐसा नहीं है। जो आपने कोटेशन भी दिया, रेफरेंस दिया जिस बुक का, सांख्य दर्शन का, वो भी आपने गलत तरीके का रेफरेंस दिया। कैसे? व्हाट द अबव एफोरिज्म रियली मीन इज दैट द एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कॉग्नाइजेंस इज नॉट इन ऑर्डर टू प्रूव दैट the existence of God, but to prove him as the material cause of the universe. लोग कैसे misquote करते हैं without referring the context, they quote the sentence or word to prove their own claim. उसका एक नमूना है। सांख्य दर्शन में एक आता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा असिद्ध होने से ईश्वर नहीं है, पर जो कोट करके ये बात बोलते हैं कि हमारे सांख्य दर्शन नास्तिक है, वो उस कंटेक्स्ट को जानबूझ करके नोइंगली इग्नोर करते हैं। कंटेक्स्ट था क्या ईश्वर इस संसार का मैटेरियल कॉज है? मैटेरियल कॉज मतलब क्या दुनिया ईश्वर से बना है? हम और आप या ये दुनिया, ईंट पत्थर आकाश ग्रह नक्षत्र ईश्वर से बने हैं? ईश्वर इज द मैटेरियल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। जैसे आपके घर में जो बर्तन है वो लोहा उनका मैटेरियल कॉज है, अगर स्टील के हैं, अगर मिट्टी के हैं तो मिट्टी उसके मैटेरियल कॉज है, जिससे आपके घर ईंट से बना है तो मिट्टी उसका मैटेरियल कॉज है, अगर लोहे से बना है तो लोहा उसका मटेरियल कॉज है, जिससे बने हैं उसका मैटर क्या यूज हुआ है? आपका शरीर के मटेरियल कॉज क्या है? पांच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि वगैरह वगैरह पृथ्वी, फिर उनके मटेरियल वो कहां से बने? त्रिगुण से, सत्व रज तम से। सांख्य दर्शन मान का जो सूत्र आपने कोट किया पूर्व पक्ष ने, एक चीज बताने से पहले चलो, बड़े इंटरेस्ट, हमारे यहां बात करने के पहले जमाने में जब किसी टॉपिक पर डिस्कशन होता था, कोई व्यक्ति अपनी बात रखता था तो उसका एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता था, उस फॉर्मूला को कहते हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब जो सवाल पूछता है, जिसके अंदर डाउट्स जो डाउट्स आ सकते हैं, बस जिसने डाउट्स उठाया है उसको पहले कोट करना पड़ता है, फिर उसको डिस्कस करके उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, फिर अपनी बात को रखना पड़ता है। सांख्य दर्शन में जो बात की चर्चा हुई उसका इतना मतलब है कि ईश्वर से दुनिया नहीं बनी, दैट मीन्स दिस यूनिवर्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ गॉड, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष से इसकी सिद्धि नहीं होती है, डायरेक्ट कॉग्नाइजेशन से इसकी पुष्टि, इसकी वैलिडिटी नहीं हो पाती है। कैसे? जरा चर्चा करते हैं। पहली बात है, जो चीज जिससे बनती है वो वैसा ही होता है, मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी जैसा होगा ना, मतलब मिट्टी का घड़ा लोहे घड़ा जैसा नहीं बन पाएगा ना। लोहे के घड़े में मिट्टी के घड़े में क्या अंतर है जी? मतलब अंतर बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना अंतर है कि वो लोहे से बना हुआ है, इसीलिए उसके अंदर वही लोहे के क्वालिटीज एट्रीब्यूट सब कुछ है, और घड़े के अंदर घड़े मिट्टी से बना है तो मिट्टी के क्वालिटीज मिट्टी के एट्रीब्यूट्स है। घड़ा बड़ा मिट्टी कमजोर होता है तो जल्दी टूट जाता है, तो लोहा ज्यादा हार्ड है तो मुश्किल से टूटता है। सोने के घड़े में और मिट्टी के घड़े में, लोहे के घड़े में अंतर क्या है? सोना येलो कलर का है, शाइनिंग कर है, तो तो नेचुरल सोने का घड़ा बनाएंगे आप तो वो येलो कलर का बनेगा, शाइन करेगा। जो कुछ मैटर में क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स होते हैं वही गुण कर्म स्वभाव वगैरह वस्तु में होते हैं। जो कॉज में होता है वही इफेक्ट में दिखना चाहिए। आप लाल ईंटों से घर बनाएंगे तो लाल ही दिखेगा ना, सफेद घर ईंट से घर बनाएंगे तो सफेद दिखेगा, अगर सफेद पेंट करेंगे व्हाइट पेंट करेंगे तो व्हाइट ही दिखेगा। जो काज होगा वही तो इफेक्ट होगा। अगर ईश्वर से हम और संसार बना होता तो ईश्वर जैसा होता। ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ, सोमनी सियंस, संपूर्ण ज्ञान भरा है, पर हमें नहीं दिखा कि पहाड़ को भी ज्ञान होता है, समुन्द्र को भी ज्ञान होता है। ऐसा किसी को लगता है? धरती को भी ज्ञान होता है, मिट्टी को भी ज्ञान होता है, हवा को भी ज्ञान होता है, सूरज चांद को भी ज्ञान होता है? ऐसा नहीं होता है। अगर ये ईश्वर से पैदा होते तो वो भी ईश्वर की तरह गुण धर्म लेते ना, पर ऐसा नहीं दिखता। और अगर हम पैदा होते तो फिर हम सर्वज्ञ होते, मतलब हम पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं, मां बाप की इतना डांट खाने की जरूरत नहीं, टीचर से इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं थी, 15-15, 18-18 घंटे बैठ के पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेने की जरूरत नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ होते। इसका मतलब हम ईश्वर से पैदा नहीं हुए हैं, ईश्वर हमारा मैटेरियल कॉज नहीं है, फिर तो हम ईश्वर जैसा ही होते ना। God is not the material cause of the world. If the all-pervading spirit, सर्वव्यापक परमात्मा, be the material cause of the universe, he would be transformed into various material objects, just as the primordial matter, जिसको प्रकृति कहते हैं, by the combination of invisible and minute atoms, becomes metamorphosed into various visible and tangible object. संसार बना किससे है? खासंजम में हम कहते हैं संसार तो आपका शरीर भी उसमें इंक्लूडेड है, आपका माइंड भी उसमें इंक्लूडेड है, आपका इंटेलेक्ट भी उसमें इंक्लूडेड है। जो संसार है वो मैटर से बना है। मैटर के दो तरह के लेबल हैं, एक जो आप विजिबल मैटर देखते हैं, विजिबल मतलब जरूरी नहीं देखने लायक, आप सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, हवा को देख नहीं सकते, पर स्टिल वी आर टॉकिंग दैट इट्स विजिबल। विजिबल मीन्स सेंस के द्वारा आप जाना जाने लायक है, कान के द्वारा। तो ये जो संसार है ये बना है जिस मैटर से, जिसको साइंटिफिक वे में आप मैटर कहते हैं, हमारे यहां उसको दर्शन में कहते हैं प्रकृति। जब आप आइंस्टाइन की फॉर्मूला पढ़ते हैं, एम इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक बोला ना, एस इज इक्वल टू एम, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई मतलब एनर्जी, एम पर मैटर, सी पर क्या करेंगे पूरा। तो जो मास है, जो जो विजिबल और इनविजिबल, या जो स्पेस और स्पेस में जितने भी तत्व हैं वो सारे एनर्जी हैं। वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं जब जब वो अनमैनिफेस्टेड रूप में होते हैं, और जब मैनिफेस्टेड रूप में होते हैं तब आप इसको स्पेस, ये वर्ल्ड, यूनिवर्स कहते हो। तो उसी को हमारी भाषा में, दर्शन में हम कहते हैं कि मूल प्रकृति। ये संसार उस प्रकृति से बना है, वो प्रकृति के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो बड़े बहुत छोटी छोटी एटम्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ये ग्रॉस यूनिवर्स बनता है। और प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है कि एनर्जी की जो क्वालिटीज होती है उसी तरह के क्वालिटीज आपको यूनिवर्स में, मैटर में दिखता है। जैसे उदाहरण दिया, आप अगर लोहे का घड़ा बनाते हैं तो लोहा जैसा ही गुण धर्म होता है, क्योंकि एनर्जी भी जड़ है, उसमें इनर्शिया है, तो मैटर में भी वही तत्व होते हैं, दुनिया में भी। वो ईश्वर से नहीं है। He is therefore not the material cause of the universe, बट द एफिशिएंट कॉज। ईश्वर हमारा कारण है, ईश्वर इज ए कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, संसार का भी हमारा भी, बट दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट कॉज। दो तरह के, तीन तरह के कॉज होते हैं कारण। एक को कहते हैं मैटेरियल कॉज, हमारी भाषा में उसको कहते हैं उपादान कारण। उपादान मतलब जो जिन एलिमेंट से चीज बना है। जैसे मान लीजिए आप एक घर बनाते हैं, तो घर में जो जो आप स्टफ्स यूज करते हैं, लोहा है, लकड़ी है, इंसुलिन है, जो कुछ भी ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, वो सब मैटेरियल कॉज है। पर इन सब को इकट्ठा कर देने से घर तो नहीं बनता। और एक दूसरा काज है, एक इंजीनियर चाहिए, बा कोई कोई आर्किटेक्ट चाहिए, कोई बनाने वाला चाहिए, कोई इंसान चाहिए जो आइडिया दे कैसा घर बने, क्या करे, जो बनवाए। ही और शी इज द एफिशिएंट काज। जो बनाने वाला है वो एफिशिएंट, उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। अब घड़ा बनता है, मिट्टी से बनता है, पर मिट्टी रख देने से घड़ा थोड़ा ही बनेगा। एक कोई सेंटिएंट पर्सन चाहिए, कोई जिंदा व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर जीवन हो, वो अपने दिमाग लगा सके और शरीर अपने एक्टिविटी से द्वारा उसको बना सके, घड़ा बना सके। वो कुम्हार है ना? तो कुम्हार घड़ा बनाने का एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है, और मिट्टी उसका मैटेरियल कॉज है। पर एक तीसरा कारण, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग कॉज, जो सहायता करते हैं वो भी मैटे। जैसे आकाश है, हवा है, पानी है, पृथ्वी है, क्या बिना स्पेस के हम कुछ बना सकते हैं? आप घर बनाए या घड़ा बनाए, स्पेस सब जगह है, पर बिना स्पेस के नहीं बन सकता। तो स्पेस एक इटर्नल थिंग है, पर स्पेस इज ए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग का। हवा, आपको हवा क्रिएट करना नहीं पड़ता है, आपको हवा लाना नहीं पड़ता, इट्स ऑलरेडी देयर, बट हवा के बिना नहीं बन सकता, इसलिए हवा वहां हेल्पिंग कॉज है। तो ईश्वर संसार का, मेरा और संसार का, मेरे शरीर का एफिशिएंट कॉज है। जिस जिसकी आइडिया है, जो सब कुछ चलाता है, पर वो उसका मैटेरियल कॉज नहीं है। इन द अदर वे वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गॉड, हम ईश्वर के अंश नहीं है। ईश्वर के द्वारा जरूर पैदा किए गए हैं, उसकी बुद्धि, उसकी विवेक शक्ति उसमें यूज हुआ है, पर वो आज ए मैटर हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। वो हमारे अंदर है, बाहर है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। वो मेरे कण कण में है, दैट्स ए डिफरेंट। मेरे कण कण में तो एनर्जी भी है, मेरे कण कण में स्पेस भी है, इसका मतलब मैं स्पेस का पार्ट नहीं हूं। गॉड इज नॉट द मैटर। इफ द कॉन्शियस बींग गॉड, जिसको आप चेतना कहते हैं, चैतन्य, विद द मैटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स, ही बींग पोजेस्ड ऑफ इन्फिनिट पावर, द वर्ल्ड ऑल्सो शुड पोजेस इन्फिनिट पावर। जैसे शुरू में मैंने कहा कि अगर हम ईश्वर के अंश होते, या संसार ईश्वर का अंश होता, बा ईश्वर हमारे और संसार का मैटेरियल कॉज होता, तो ईश्वर में और एक गुण है, उसको कहते हैं हम ओमनीपोटेंसी, सर्वशक्तिमत्ता, तो मुझ में भी होता और इस संसार में हर चीज में होता, पर मुझे तो उठा के कोई भी उठा के फेंक देगा, तो थोड़ा सा मेरे से 10 किलो ज्यादा भारी हो, तो कहां है मेरी सर्वशक्तिमत्ता? और जो मुझे उठा के फेंकता है उसको भी कोई दूसरा उठा के फेंक देगा, और ऐसे बड़े बड़े उठाकर फेंकने वाले को हवा उठा के फेंक देता है, सुनामी उठा के फेंक देती है ना? किसी को कोई दूसरा आता है, ज्यादा ताकतवर पैदा होता है। इसका मतलब हम हमारे अंदर वो सर्वशक्तिमत्ता नहीं है, वो गुण नहीं है। Therefore God is not the material, the efficient cause of the world। तो फिर कौन है? संसार किससे बना है? ये दुनिया, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और ये जो पूरा दुनिया है, इट इज द मैटर। एक रेफरेंस देखिए, श्रुति प्रमाण, श्वेताश्वेत उपनिषद का ये एक मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है। द उपनिषद दैट मीन्स द ऑल्सो डिस्क्राइब्स द प्राइमोर्डियल मैटर अलोन एज द मैटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड एज इन द फॉलोइंग वर्स। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह्वि प्रजा सृजमानाम स्वरूपः। श्वेताश्वेतर उपनिषद चौथा अध्याय पांचवा श्लोक। एक अजा, अजा मीन्स विदाउट बिगिनिंग, जो पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, जो इटर्नल, एक ऐसी इटर्नल तत्व है, एकाम विच इज एलोन, अकेली है। लोहित रेड, कृष्ण ब्लैक एंड शुक्ल इज व्हाइट, ये लाल सफेद और काले रंग वाली, ये लाल सफेद काला रंग क्या है? कलर जो होते हैं वो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रेड कलर जो है वो एक्टिविटी का, वो एक्शन का सिंबल है, रजोगुण का, जिसको आप कहते हैं रजोगुण। सत्वगुण स्थिरता का, शांति का, सत्वगुण का प्रतीक है। कृष्ण वर्ण मीन्स द ब्लैक कलर, डार्कनेस का, इनर्सिया का प्रतीक है, तमोगुण का। तो ये तीन रंग वाली, मतलब तीन गुण वाली, सत्व रज तम गुण वाली एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो बहुवी प्रजा, प्रजा मीन्स क्रिएचर, अलग अलग टाइप के, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स पैदा करती रहती है, कंटिन्यूअसली डूइंग। एंड वो जो प्रजा है, जो क्रिएचर्स है, वो कैसी है? स्वरूपः, इट्स लाइक हरसेल्फ, वो जैसी खुद है वैसी है, नेचुरली। यही तो होना चाहिए। इंसान के बच्चे थोड़े ही बंदर और गधे उल्लू पैदा होंगे, इंसान ही तो होंगे ना, गधे से थोड़े ही इंसान पैदा होने वाला, मिट्टी से थोड़े ही पानी पैदा होने वाला। तो जो मेटेरियल कॉज है वो उसी तरह का तो इफेक्ट आएगा। प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व रज तमोगुण वाली प्रकृति, वो जैसी है वैसी ही प्रजा पैदा करती है। वो कैसी है? वो तीनों गुणों की एक कॉम्बिनेशन है, उसमें इनर्शिया भी है, जड़ता भी है, उसमें एक्टिविटी भी है, रजोगुण भी है, और उसमें स्थिरता, शांतिता, इल्यूमिनेशन, प्रकाशकत्व भी है, सत्वगुण भी है। ये संसार देखेंगे, इन तीनों, संसार का हर वस्तु इन तीनों गुणों से भरा हुआ मिलेगा। हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, सूरज हो, चांद हो, पेड़ हो, पौधे हो, आपका शरीर हो, आपका मन हो, आपकी बुद्धि हो, कोई भी चीज हो, उनमें वो इल्यूमिनेशन भी है, प्रकाशकत्व भी है, तभी आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। आपके शरीर में वो तमोगुण है, तभी आप बैठते हैं, सोते हैं, रेस्ट करते हैं। अगर तमोगुण नहीं होता, आप इतने बेचैन होते, पागल हो जाते, क्योंकि आप सो नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। तो तमोगुण बड़ी बुरी चीज है, पर फायदे की चीज है। चलो, दुनिया में वैसे तो ईश्वर की सृष्टि में कोई चीज बुरी चीज नहीं है, आप मिसयूज करते हैं। तभी तमोगुण आपके शरीर में इसीलिए है कि आप कभी कभी तो चुपचाप हो जाए, अपने आप तो होंगे नहीं, तो भगवान जबरदस्ती कराता है, तो आप सो जाते हैं। सोते हैं तो आपकी भला होता है, अगले दिन फिर भला चंगा होकर उठते हैं, फ्रेश होकर के आते हैं, फिर काम करते हैं। कल्पना करिए कि आपकी नींद ना आए। अब कल्पना करने की क्या जरूरत है, बहुत सारे होंगे जिनको रात को नींद आती नहीं है, गोलियां खानी पड़ती है और कभी कभी दो चार ज्यादा खानी पड़ती है, तो कल्पना करने की जरूरत नहीं, वो तो सबके साथ होती है, उनको पूछो क्या बेचैनी होती है। और ये अगर सालों हो गया तो एक के सालों तक चलने लगा। इसी तरह रजोगुण के कारण हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में वो एक्टिविटी होती है, हम फंक्शन कर पाते हैं संसार में भी। सत्वगुण के कारण हम समझ पाते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव पावर आता है दुनिया में, जो अग्नि सूर्य वगैरह में प्रकाश होता है, ये तीनों गुणों से बने हैं, तो तीनों गुणों जैसा हम व्यवहार करते हैं। सो बट द गॉड इज द एफिशियंट काज ऑफ द वर्ल्ड, बट गॉड द ऑल परवेडिंग स्पिरिट बींग अनचेंजेबल इज नेवर ट्रांसफॉर्म्ड टू एनी अदर फॉर्म, रिमेन्स ऑलवेज द अनमॉडिफाइबल सेम। ईश्वर अनचेंजेबल है, वो अनित नित्य है, नित्य और कूटस्थ भी है, वो इटर्नल है, ऑल्सो अनचेंजेबल। मेरी जो आत्मा है जिसकी चर्चा बाद में करेंगे, वो भी इटर्नल है, अनचेंजेबल है। क्वालिटीज में क्या अंतर है नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, पर ये जो संसार है, ये संसार जहां से बनी, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति, वो भी इटर्नल है बट चेंजेबल है, बदलती रहती है। आज पानी है तो कल बर्फ बन जाता है, कल भाप बन जाता है, कल ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन जाता है, तो कल एटम बन जाता है, कल इलेक्ट्रॉन बन जाता है, बदलता रहता है। आज वो पेड़ है तो कल लकड़ी बन जाती है, कल राख बन जाता है, फिर कल वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, चेंजेबल है। कभी एटम फॉर्म में है तो कभी बड़े बड़े ग्रास फॉर्म में है। तो संसार या मेरा शरीर, मन, बुद्धि, जो कुछ भी है, ये ईश्वर उसका उपादान तत्व नहीं है, इसकी मूल प्रकृति उपादान तत्व है। ईश्वर सृष्टा है, द क्रिएटर, बट ही इज नॉट द मैटेरियल काज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट टाइम फिर हम अगला जो चर्चा का विषय है वो है कि आपको रेफरेंस दे करके छोड़ते हैं, डज गॉड इनकार्नेट और नॉट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, नेक्स्ट टाइम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।